हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे बहुत ही विशेष महोत्सव में। इस वर्ष की श्री बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा, इस उपलक्ष पर आज हम रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु, इससे कुछ चर्चा करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद विभिन्न रसों के साथ साथ भगवान के जो निजी पार्षद हैं उनका गुणगान वो इस एक अध्याय में करते हैं जिसका शीर्षक है कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति। और इस एक पद में श्रीपाद रूप गोस्वामी बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं। और बहुत ही विशेष गुणगान है बलराम जी का। यहां पर बलराम जी का गुणगान हुआ है रूप गोस्वामी द्वारा। वो जिस कृष्ण प्रेम के नशे में रहते हैं, हालांकि हमने अक्सर सुना है बलराम जी वारुणी का पान करते हैं, यहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं मद। जब कोई मद्यपान करके या अत्यधिक कामी होने से मिथ्या प्रतिष्ठा जताने के लिए उद्धत बनता है तो उसकी जबान लटपटाती है, आंखें सूज जाती है और शरीर पर रक्तिमा के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ललित माधव में उल्लेख है कि एक बार श्री बलराम जी अत्यधिक मधुपान से मदोन्मत होकर चींटियों को संबोधित करने लगे। चींटियों को, अरे चींटियां, अरे चींटियों के राजाओं, तुम इन बिलों में क्यों छिप रहे हो। उसी समय उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र इनको इस प्रकार से संबोधित किया, अरे शची के खिलौने इंद्र, तुम हंस क्यों रहे हो। मैं सारे ब्रह्मांड को नष्ट भ्रष्ट कर सकता हूं और मैं जानता हूं कि मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण मुझसे रुष्ट नहीं होंगे। तब वे कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मुझसे कहो न कि सारा जगत क्यों डगमगा रहा है, ये सारा जगत हिलता क्यों दिख रहा है, मुझे चंद्रमा घटता और बढ़ता क्यों प्रतीत हो रहा है। हे यदुवंशियों, आप मुझ पर हंस क्यों रहे हो, कृपया कदम पुष्प से बनी मधु मुझे वापस दे दो। शील रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मदोन्मत बलराम जी और इनकी ऐसी मदोन्मत बातें हम सब के ऊपर कृपा करें। आप लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि बलराम जी के ऐसे स्वरूप को कैसे समझा जाए। रूप गोस्वामी इसलिए इस बलराम जी के दृष्टांत के पश्चात प्रार्थना बलराम जी से क्या करते हैं कि ये मदोन्मत बलराम जी जो मद्यपान में मद नहीं है बल्कि कृष्ण प्रेम में, तो ऐसे कृष्ण प्रेम में मदोन्मत बलराम जी की कृपा हम सब पर हो। बलराम जी का यदि परिचय दिया जाए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण का परिचय किस प्रकार से दिए हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और बलराम जी का परिचय श्रील प्रभुपाद ने दिया द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड, जो भगवान श्री कृष्ण के परम सेवक हैं। अब हम हमारी साधना भक्ति में भगवान की सेवा ही कर रहे हैं और भगवान के सेवकों का सेवक बनना चाहते हैं, ये हमारा परिचय। तो आज का दिन हम कृष्ण सेवकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि बलराम जी का परिचय इस प्रकार से दिया गया है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड, भगवान श्री कृष्ण के परम सेवक, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के परम सेवक से हम सेवा की क्या शिक्षाएं सीखें। है आवश्यक। हालांकि बलराम जी के अनगिनत गुण हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान हैं, हालांकि वो भगवान की सेवक की भूमिका निभा रहे हैं, परंतु है वो साक्षात भगवान। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि कृष्ण और बलराम, इनमें अंतर क्या है? प्रभुपाद ने पूछा, कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है? केवल इतना ही है कि भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी वो श्वेत। भगवान श्री कृष्ण जो बारिश का बादल होता है उसके समान है और बलराम जी स्प्रिंग क्लाउड, उसके समान सफेद। परंतु फिर भी स्वेच्छा से बलराम जी कौन सा पद स्वीकार किए हैं, हालांकि भगवान श्री कृष्ण के ही बराबर हैं, जैसे कि यहां पर इस सुंदर चित्र में हम देख रहे हैं। इस सुंदर चित्र में ये जो मुद्रा है कृष्ण बलराम की, बहुत प्रसिद्ध मुद्रा है, वृंदावन के हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण बलराम इसी मुद्रा में खड़े हैं, और अभी हमने कृष्ण बलराम के अर्च विग्रह का अभिषेक किया, इसी मुद्रा में खड़े। तो यहां पर दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परंतु स्वेच्छा से बलराम जी जब भी अवतरित होते हैं किसी भी युग में भगवान के किसी भी अवतार के साथ, अपने परम सेवक की भूमिका नहीं छोड़ते, हर समय वो उनका बरकरार रहता है, वो परिचय उनका। तो आज हम एक ऐसा गुण लेंगे बलराम जी का जो कि बहुत प्रेरणादायक है हमारे लिए। इसे हमारे आचार्य कहते हैं एडैप्टेबिलिटी, बलराम जी की एडैप्टेबिलिटी। हिंदी में इसे कहेंगे कि किसी भी स्थिति में अपने आप को रूपांतरित कर लेना या अनुकूलित कर लेना। इस भौतिक संसार में ये एक बहुत ही विशेष और अनदेखा गुण है। कौन सा गुण? एडैप्टेबिलिटी। क्यों? कारण ये है कि इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों का जो अहंकार है वो इतना बड़ा और इतना गहरा कि किसी भी स्थिति में अनुकूलित हो पाना या अपने आप को उस स्थिति के अनुसार रूपांतरित कर लेना, एडैप्ट करना, बहुत कठिन है लोगों में, विशेष रूप से हम जो कलयुग में निवास कर रहे हैं, कलयुग निवासी हम, और यहां पर जब हम बलराम जी के संदर्भ में इस गुण को देख रहे हैं उनके अंदर, अपने आप को रूपांतरित कर लेना या अडेप्ट कर लेना, ये केवल शारीरिक रूप से नहीं उन्होंने दिखाया कर, वो तो हमें ये न के न प्रकारेण प्रकृति के अनुसार करना ही पड़ता है। जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं, यहां पर गर्मी होती है, मच्छर ज्यादा काटते हैं पाश्चात्य देश के अनुसार, इसलिए सारी बीमारियां डेंगू मलेरिया। पाश्चात्य देश में आप वहां पर जाओ, वहां पर ढूंढने पर भी मच्छर नहीं दिखता। तो वहां के लोग जब भारत में आते हैं तो यहां पर शारीरिक रूप से अडेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके, यहां की गर्मी। अब बहुत से हमारे इस्कॉन के पाश्चात्य भक्त, वो जब पहली बार भारत में आए और उनको बताया गया था कि आप सर्दी के मौसम में जाना, तो सर्दी के मौसम में लैंड करते ही, ये सर्दी का मौसम है। इस बार जब मैं अपने टूर से आ रहा था वापस लंदन से, तो एक ब्रिटिशर अंग्रेज, अब एयरक्राफ्ट में तो एसी होता है, तो उसे कुछ पता नहीं लगा कि भारत पहुंच चुका है एयरक्राफ्ट मुंबई। जैसे ही वो एयरप्लेन से बाहर आया, मतलब वो जो सीढ़ियां होती हैं, वो अभी तक वो रनवे पर भी नहीं उतरा था। जैसी एक सीढ़ी पर उसने अपना पैर रखा नीचे उतरने के लिए, जो गर्मी महसूस की उसने, उसने अपनी टी शर्ट निकाल दी खाली एक वो शॉर्ट्स में, सभी देख रहे हैं कि इसको हुआ क्या अचानक। तो यहां पर मुद्दा यह है कि किसी भी परिस्थिति में शारीरिक रूप से अडेप्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है लोगों में। तो कल्पना कीजिए मानसिक रूप से, लोग कहते हैं ना ये मेरा नेचर है, बदलेगा नहीं, मैं इसी नेचर का हूं, यदि चाहिए तो झेलो। दिस इज माय नेचर, आई विल नॉट चेंज। ये लक्षण किसका है? अहंकार। तो कलयुग में ये जो गुण है अडेप्टेबिलिटी, बहुत मुश्किल है। तो कल्पना कीजिए श्रील प्रभुपाद ऐसे हिप्पियों को, ऐसे पाश्चात्य लोगों को, न केवल शारीरिक रूप से, जब जुहू का मंदिर बन रहा था तो उस समय वहां पर ऐसी स्थिति में गिरिराज महाराज, तमालकृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज आज की भी तुलना में वो जिस परिवार से हैं अमेरिका में, वो बिलियनियर्स जिसे कहते हैं, ऐसे परिवार से, और वो वहां पर जुहू में, अब तो आप जुहू का मंदिर देखो तो बहुत आलीशान मंदिर है, उस समय जब बना कुछ नहीं था वहां पर, तो वहां पर एक केवल झोपड़ा था और चारों तरफ कीचड़, कोई बस्ती भी नहीं थी। वो तो अब वहां पर इतनी बस्ती आप देखते हो, उस समय कोई बस्ती भी नहीं थी, केवल एक झोपड़ा और चारों तरफ कीचड़ और मच्छर चूहे। इस स्थिति में गिरिराज महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, ये सब एडाप्ट किए। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद का आदेश था, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना था। और ये केवल एक उदाहरण हम दे रहे हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो अब न केवल ऐसा नहीं था कि श्रील प्रभुपाद जी ने कोई तनख्वाह दे रहे थे कि साइट पे होता ना, साइट पे सुपरवाइजिंग करता है कोई, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जो कुछ, वो क्यों धूप में खड़ा खड़ा जो कुछ करता है, क्यों करता है? पैसे मिलते हैं। यहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोई पैसे नहीं, उल्टा गिरिराज महाराज जो भी फंड कलेक्शन करते थे लाके प्रभुपाद को दे देते थे। तो मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से एडाप्ट करना, ऐशो आराम को छोड़ना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आसक्तियों को छोड़ना और इस स्थिति में रहना, ये वो कर पाए क्योंकि श्रील प्रभुपाद की कृपा। और प्रभुपाद कौन है? बलराम जी के प्रतिनिधि, आदि गुरु। क्योंकि बलराम जी में ये गुण है, एडेप्टेबिलिटी। तो बलराम जी का चरित्र हम यदि देखें तो केवल बलराम जी ही एक ऐसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा पांचों रसों में करते हैं। इसे कहते हैं अडेप्टेबिलिटी, पांचों रसों में, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य, यहां तक कि माधुर्य रस। शांत रस में बलराम जी अपना विस्तार करते हैं धाम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण जो भी गहने पहनते हैं, आभूषण, वस्त्र, उसके रूप में बलराम जी अपना विस्तार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन बनते हैं, ये सब शांत रस में बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। दास्य रस में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत। माता यशोदा एक बार भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी और बलराम जी वहां खड़े देख रहे थे, तो माता यशोदा ने कहा, तुम देख क्या रहे हो, मदद करो। तो बलराम जी भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ किए, हालांकि बड़े भाई, लेकिन बलराम जी एक दास की भूमिका भी निभाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण दबाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपने कंधे पर उठाकर, जब भी खेल में बलराम जी हार जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को अपने कंधे पर उठाते, दास्य रस। सख्य रस, सखा के रूप में बलराम जी, कृष्ण और बलराम की अनगिनत कथाएं हैं, यहां तक कि वात्सल्य, एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए बलराम जी वात्सल्य रस। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण, यहां पर हम देख रहे हैं, कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे, तो बलराम जी एक वात्सल्य भाव में भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख रहे थे और भगवान को संकेत दे रहे थे कि अब बहुत हो गया, अब उतर जाओ। होते ना कई बार बड़े बुजुर्ग बच्चों को कहते हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अब बस बहुत हो गया, चलो घर आओगे। तो ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिसमें बलराम जी अपना वात्सल्य भाव भगवान श्री कृष्ण की ओर दिखाते हैं। और माधुर्य रस, बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में विस्तारित होते हैं और अनंग मंजरी के रूप में वो भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस में भी मौजूद हैं। तो यहां पर ये जो बलराम जी का गुण है, जिसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी भी रस में वो मौजूद हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इसे कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। रामानुजाचार्य, रामानुज संप्रदाय के तो श्री संप्रदाय के रामानुचार्य, तो उन्होंने बलराम जी का एक विशेष जो विस्तार है शेष, बलराम जी का एक और नाम है शेष, तो उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि शेष का अर्थ क्या है। उन्होंने व्याख्या की है शेष की, वो कहते हैं शेष का अर्थ है कि बलराम जी का मनोभाव हर समय क्या रहता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कि मैं केवल उनका शेष हूं और वो विशेष, वो विशेष हैं और मैं केवल इनका शेष हूं। अब देखिए दोनों भाई हैं और बलराम जी बड़े भाई, कलयुग में अक्सर देखा जाता है कि एक भाई दूसरे भाई को शेष या विशेष एक दूसरे को कोई कह दे कि मैं विशेष तू शेष, तो दूसरा भाई बोलेगा कि अच्छा तेरा शेष भी बाकी नहीं रहेगा, शीश भी बाकी नहीं रहेगा। तो रामानुजाचार्य वो व्याख्या करते हुए कहते हैं शेष बलराम जी का ये जो नाम है, बलराम जी के गुण के अनुसार उनका मनोभाव क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं, नॉट फॉर माई सेल्फ। ये एक लाइन में वो शेष का अर्थ है, नॉट फॉर माई सेल्फ, अर्थात एवरीथिंग फॉर विशेष, एवरीथिंग फॉर कृष्णा। तो अब वही बलराम जी लक्ष्मण के रूप में प्रभु श्री राम के साथ, तो यहां पर जो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में आज पढ़ा कि बलराम जी वारुणी का पान कर मदोन्मत, और यहां पर रूप गोस्वामी लिखते हैं कि वो फिर सो गए। वो इसलिए सो गए ताकि भगवान श्री कृष्ण की उस समय गोपियों के साथ लीला प्रारंभ होने वाली थी, तो जानबूझकर बलराम जी अपने आप को उस स्थिति में रख रहे थे ताकि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला ठीक से चले। और वही बलराम जी जब लक्ष्मण के रूप में आते तो 14 वर्ष सोते नहीं, एडेप्टेबिलिटी। हमको बोला जाए कि जप करते समय, प्रवचन सुनते समय जागते रहो, वो कितना मुश्किल हो जाता है। यहां पर 14 वर्ष लक्ष्मण जी सोए नहीं। ये जो बलराम जी का नाम है शेष या लक्ष्मण जी का एक ही उनका नाम शेष, यही नासिक पंचवटी धाम में प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण जब आए तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि पर्ण कुटी बनाओ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे और सीता के लिए। तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आप मेरा अपमान कर रहे हो। अब देखो कलयुग में यदि कोई भाई इस प्रकार से कहे कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, इतनी इतनी प्रॉपर्टी मेरी, और वो बोले अपमान करते हो, मेरी इतनी प्रॉपर्टी खाली। यहां पर लक्ष्मण जी जब बोल रहे हैं कि मेरा आप अपमान कर रहे हो, उसके पीछे अर्थ क्या है उनका कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगा। और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा मेरा नाम है शेष, कुछ नहीं, अर्थात आपका जो बचा कुचा शेष है उसी पर मैं जी रहा, उसी का मैं बना हूं। तो बलराम जी के रूप में यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो तो बलराम जी मद्यपान कर सो जाते, लेकिन लक्ष्मण के रूप में प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए 14 वर्ष तक पलक भी नहीं झपते। और महाभारत में वर्णन है कि बलराम जी इतना ज्यादा अपने आप को ढाल लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो गुण एडेप्टेबिलिटी का, अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं इस हद तक कि वो पांडवों के विरुद्ध भी गए। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर जा रहे थे हस्तिनापुर, तो उससे पहले सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ बैठे थे, और बलराम जी वहां पर अचानक वो युधिष्ठिर महाराज को फटकारने लगे, डांटने लगे बलराम जी युधिष्ठिर महाराज को कि ये सब तुम्हारी करतूत है, वो द्यूत क्रीड़ा में तुम सब कुछ लुटा आए और अब ये सब को हमको संवारना पड़ रहा है। किसने कहा था वहां जाकर जुआ खेलने के लिए? तो अब हमें लगेगा कि आदि गुरु बलराम जी युधिष्ठिर महाराज के साथ ऐसी बातें करते हैं इस तरीके से। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण वो युधिष्ठिर महाराज और पांडवों की तरफदारी लेने लगे। तो महाभारत में बताया गया है कि बलराम जी ने जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण के सामने युधिष्ठिर महाराज को ऐसे शब्द कहे ताकि वो भगवान श्री कृष्ण को एक और अवसर देना चाहते थे पांडवों की तरफदारी, पांडवों का डिफेंस लॉयर बनने के लिए। युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध में बलराम जी नहीं थे, क्योंकि यदि बलराम जी युद्ध में होते तो अर्जुन को जो श्रेय मिला और अन्य पांडवों को जो श्रेय मिला उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। नाम है बलराम, तो अकेले ही काफी थे इन सबको संभालने के लिए। तो देखिए, इतने बड़े गदा युद्ध के योद्धा, कुरुक्षेत्र की रण में कोई अगर किसी में निपुण होता है तो यदि उसके फील्ड का कहीं पे कुछ चल रहा होता है तो सबसे पहले अपनी एंट्री कराता है। लेकिन बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। ताकि श्रेय मिले पांडवों को। एडेप्टेबिलिटी, ये सब हमें बलराम जी से सीखना है कि कैसे हम अलग अलग स्थितियों में अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शेष बने, विशेष नहीं शेष। बलराम जी की नम्रता देखने में आती है। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो सारे तीर्थों में भगवान बलराम जी गए एक तीर्थ को छोड़कर, कौन सा? जगन्नाथपुरी। बलराम जी जगन्नाथपुरी नहीं गए, क्यों? क्योंकि वो जगन्नाथपुरी में अपने स्वयं की आराधना नहीं देख पाते थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो इसलिए वो जगन्नाथपुरी नहीं गए। बाकी जितनी भी तीर्थ यात्राएं उन्होंने की वो सब केवल इसी भावना में कि कैसे मैं पुण्य अर्जित करूं, मेरे जो विशेष है उनकी सेवा में उन पुण्यों को लगाने के लिए। अब देखिए, इस भौतिक संसार में हम कितना प्रसन्न होते हैं हम अपनी खुद की फोटो देखकर। तो मान लीजिए कोई ऐसा मंदिर जहां पर हमारा अर्च विग्रह बनाया गया और सब लोग आरतियां कर रहे हैं और रथ यात्रा निकाली जा रही है, तो क्यों नहीं, हम जाएंगे कि नहीं अपने रथ यात्रा में? लेकिन बलराम जी, उनकी नम्रता ऐसी कि बिल्कुल नहीं। तो बाहरी रूप से बलराम जी दिखते होंगे कि हर समय वो किसी नशे में धुत होते हैं, लेकिन उनकी चेतना हर समय विशेष की प्रसन्नता कैसे हो रही है, केवल उसी में। इसलिए लक्ष्मण जी, देखिए वही बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में जो उन्होंने सेवाएं की प्रभु श्री राम की ओर से और प्रभु श्री राम के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे थैंकलेस सर्विस, हर समय लक्ष्मण जी को आगे किया जाता था। जब वो मारीच, वो रावण ने मारीच को लगाया सोने का मृग बनाकर, तो वहां पर यहीं पर ये सब कुछ हुआ। तो सीता देवी लक्ष्मण जी के ऊपर लांछन लगाई, और कैसे लांछन, कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी ऐसे लांछन सुन सकता है? सीता देवी लक्ष्मण जी को कहती हैं कि तुम इसलिए नहीं जा रहे प्रभु श्री राम की मदद करने क्योंकि तुम एकांत में मेरा भोग करना चाहते हो। लक्ष्मण जी यहां पर सीता देवी के मुख से ये सुने, और लक्ष्मण जी जानते थे कि प्रभु श्री राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये क्या ये मारीच कर पाएगा, वो जानते थे मारीच की करतूत है सब। तो सीता देवी यहां से डांट फटकार कर लक्ष्मण जी को भगा रही, और वहां जाते हैं तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को देखते हैं, सीता को अकेले छोड़ के आ गया, तुम्हें क्या आदेश दिया था? तो देखिए इस प्रसंग में सीता देवी ने लक्ष्मण के चरित्र पर संशय किया, और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी के काबिलियत पर संशय किया। एक मनुष्य के पास यही तो दो चीजें होती हैं, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस। एक पुरुष इसी से बना हुआ है, उसका चरित्र और उसकी काबिलियत, इन दोनों पे संशय किसने किया? कोई ऐरे गहरे ने नहीं, जिनकी सेवा के लिए वो सब कुछ छोड़कर, उनकी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर, सब पूरा राजमहल छोड़कर यहां पर बिना खाए पिए सोए जिनकी सेवा कर रहे हैं, वही सीताराम। एक कहते तुम्हारा चरित्र ऐसा है, दूसरे कह रहे तुम्हारी काबिलियत नहीं। तो यहां पर मुद्दा यह है कि देखिए किस प्रकार की कठिन से कठिन सेवा उन्होंने की, और फिर जब सीता देवी को प्रभु श्री राम ने अयोध्या से बहिष्कृत किया तो किसको? फिर लक्ष्मण को, अग्नि परीक्षा के लिए लक्ष्मण। इसलिए फिर उस जन्म में लक्ष्मण जी ने ठान लिया कि अगले जन्म में मैं बड़ा बन के आने वाला हूं, लेकिन फिर भी वो भी, उसके पीछे भी उनका उद्देश्य यही था कि मैं हर स्थिति में मेरे स्वामी की, मेरे जो विशेष हैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। इसलिए श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में नारायण कवच की जो प्रार्थनाएं हैं उसमें बलराम जी की एक बहुत सुंदर प्रार्थना की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हे बलराम जी, आज भी हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं, हे बलराम जी आप मुझे जो जहरीले सर्प हैं, क्योंकि बलराम जी का एक विस्तारित अवतार है अनंत शेष, तो हे अनंत शेष आप मुझे जहरीले सर्पों से बचाइए। और वो जहरीले सर्प क्या है? द्वेष। मेरे मन में जो द्वेष है, ये द्वेष मेरे मन का दूर कीजिए। इसलिए बलराम जी, उनका एक और परिचय है, हालांकि ये उनका परिचय है कि वो शेष हैं विशेष के, इसके साथ साथ उनका एक और परिचय है भक्त रक्षक। आज लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं ना, असली रक्षाबंधन हमारे लिए, हम वैष्णवों के लिए असली रक्षाबंधन क्या है कि श्री बलराम जी की रक्षा की याचना करना, ताकि बंधन से छूटे इस भौतिक संसार के, और बंधनों में नहीं रहना हमें, इस भौतिक संसार के बंधनों से छूटे, इसलिए हम बलराम जी की रक्षा की याचना आज करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज वो जब अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन जब द्वारका से हस्तिनापुर आते हैं और ये समाचार लेकर कि भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम लौट चुके हैं, तो युधिष्ठिर महाराज द्वारकावासियों के विषय में पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछते हैं, और जब बलराम जी के विषय में पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो बलराम जी के विषय में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि बलराम जी कैसे हैं जो भक्तों के रक्षक हैं, हाउ इज बलराम जी हु इज अ प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटीज। इसलिए जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा जो कि आदि गुरु बलराम जी के सारे प्रतिनिधि हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि वो कैसे अपने अनुयायियों की रक्षा किए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद हर समय वो अपने शिष्यों को डिफेंड किया करते थे, प्रोटेक्ट किया करते थे। कितनी सारी प्रसिद्ध घटनाएं हैं, प्रभुपाद जब जयपुर में थे तो उन्होंने कौशल्या माता जी को ईशोपनिषद गाने के लिए कहा, वहां के कई जो संस्कृत विद्वान आए थे उनके सामने एक अमरीकी, उस समय कौशल्या माता जी कुछ 18-19 वर्ष की थी, तो एक अमरीकी युवती इन बड़े बड़े विद्वानों के सामने ईशोपनिषद गा रही संस्कृत, वो सब सुनने के बाद उन्होंने कहा प्रोनंसिएशन ठीक नहीं। प्रभुपाद ने तुरंत डिफेंड किया और कहा कि इनका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होगा, लेकिन इनका रनंसिएशन तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। जब एक व्यक्ति प्रभुपाद से कहे, यहां पर हम प्रभुपाद का, ये बलराम जी का गुण देख रहे हैं, डिफेंडिंग डिवोटीज, प्रोटेक्टिंग डिवोटीज, एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से कहा, मैं देखता हूं आपके प्रवचन में आपके शिष्य हर समय सोते रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, हर समय सोते हैं 100%, 95%। तो प्रभुपाद तुरंत हाँ ये स्वीकार किए कि 95% मेरे शिष्य मेरे लेक्चर में सोते हैं, लेकिन वो जो 5% जगह रहते हैं उसको पकड़कर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को डिफेंड किया। प्रभुपाद ने इस व्यक्ति से कहा, तो 5% तो वो जगह रहते हैं ना, तुम तो आते ही नहीं। गिरिराज महाराज वो बता रहे थे कि बंबई में ये घटना हुई, एक लाइफ मेंबर वो प्रभुपाद के पास क्रोधावस्था में आए, आग बबूले, और प्रभुपाद से कहा, एक शिकायत लेकर आए थे एक भक्त की, और प्रभुपाद से कहा कि आप जानते हैं ये आपके शिष्य ने किया क्या है, कुछ उनसे गलती हुई बड़ी प्रभुपाद के एक शिष्य से। तो ये लाइफ मेंबर प्रभुपाद के पास क्रोधावस्था में शिकायत लेकर आए, और प्रभुपाद सुन रहे थे, प्रभुपाद भी जानते थे कि उन्होंने, उस शिष्य ने गलती की। तो ये लाइफ मेंबर प्रभुपाद को कहते हैं उसे मंदिर से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, हो गया, निकाल ही दिया उसको मंदिर से। और गिरिराज महाराज जानते थे कि प्रभुपाद ने उस शिष्य को छिपा कर रखा था पलंग के नीचे। तो गिरिराज महाराज बोल रहे थे कि प्रभुपाद हालांकि जानते थे कि मेरे शिष्यों में कितनी खामियां हैं, इतनी सारी खामियां प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद को दिख रही थी, लेकिन प्रभुपाद हर समय अपने शिष्यों को प्रोटेक्ट करते थे। यहां तक कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद ने लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबको भी जानना, प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स ऑफ इस्कॉन आर फ्री फ्रॉम सिंस। इसका अर्थ यह भी है कि प्रभुपाद ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मैंने जो मेरी पुस्तकों में ये आह्वान दिया है मेरे शिष्यों या मेरे फॉलोअर्स के विषय में, तो वो आप लोग सिद्ध कीजिए। तो ये हमारे लिए हमारा सही मायने में रक्षाबंधन त्यौहार, बलराम जी और बलराम जी के प्रतिनिधि कैसे हमारी रक्षा करते हैं हर एक पग पर। इसलिए यदि हम बलराम जी ने जो जो लीलाएं भी की उसमें भी यदि देखें, जैसे धेनुकासुर बहुत ही प्रसिद्ध लीला है, बलराम जी ने बहुत कुछ गिने चुने असुरों का वध किया था, चुनिंदा, उन्होंने बाकी सब भगवान कृष्ण के लिए छोड़ दिया था। इसलिए कृष्ण और बलराम इन दोनों के विषय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण असुरों का वध बहुत निपुणता से करते थे, या उसे हमारी भाषा में कहेंगे स्टाइल में, स्किलफुली। तो भगवान श्री कृष्ण असुरों का वध स्टाइल में करते थे और बलराम जी वो असुरों का वध एकदम नृशंस तरीके से, उसमें कुछ अपना स्टाइल वगैरह नहीं दिखाते थे ज्यादा, जैसे धेनुकासुर। अब ये धेनुकासुर, हम इसका नाम देखिए, धेनुका गधा, धेनुका, कोई अपना नाम ऐसा रखेगा? जैसे यहां पर देख खरदूषण, वो भी दूषण का अर्थ है बुरी आदतें, बुरे गुण, और खर का गधा, एस डीमन, ये गधा असुर, धेनु का असुर। तालवन है गधा, लेकिन तालवन वृंदावन के 12 वनों में से तालवन में ताल वृक्ष के ताल के फल उसके ऊपर इसने अपना कब्जा जमाए हुए। तो गोप सखा वो आए बलराम जी, कृष्ण बलराम के पास, और उन्होंने कहा कि इतनी खुशबू हमें आती है तालवन से इन फलों की, लेकिन हम एक भी फल का आस्वादन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये गधा वहां पर अपना कब्जा जमाए हुए। तो बलराम जी वहां पर जाते हैं और इसे ये, अब देखिए बलराम जी वहां पर गए हैं स्वयं चलकर, तो ये धेनुकार सुर से धेनुक महाजन बन सकता था यदि वो फल लाकर बलराम जी को अर्पित करता, लेकिन गधे करते क्या है, दुलत्ती लगाते हैं ना पीछे से, तो वो बलराम जी को दुलत्ती लगाने के लिए अपना पिछवाड़ा दिखाने लगा। तो बलराम जी ने अब उसकी दुलत्ती को पकड़ा और कोई स्टाइल वाइल का उन्होंने ये नहीं कि स्टाइल में करना है इसको कुछ, उसको इस प्रकार से मारा हालांकि प्रभुपाद कृष्ण बुक में लिखते हैं, इट वॉज अ वेरी पैनोरामिक सीन. वो घासली नहीं बोलते, बोलते पैनोरामिक सीन. बहुत अच्छा दिख रहा था. उसको फेंक के ताल वृक्ष के ऊपर इतने सारे ताल वृक्ष गिरे. अब देखिए, उसका उद्धार बलराम जी ने इस प्रकार से किया. तो धेनुकासुर का वध होने के पश्चात धेनुकासुर के जितने फॉलोअर्स थे, जितने शिष्य थे धेनुकासुर के, और तो धेनुकासुर के शिष्य कौन होंगे? और गधे. तो बाकी सारे जितने गधे थे उस तालवन में, वो आए भागते हुए, नेचू नेचू करते. वो आए भागते हुए और उन्होंने देखा कि ये जो बड़ा, ये बहुत ही सुंदर सफेद रंग का दिखने वाला बलराम जो है, ये खतरनाक है. तो कम से कम शिक्षा ले लेनी चाहिए थी कि हमारे सरदार को इस प्रकार से मारा है तो हम तो सुधर जाएं. नहीं, वो भी मारने के लिए आए. इसे कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि. मतलब वास्तविक रूप में गधे थे वो, लक्षण पूरा कर रहे थे अपने गधेपन का. तो वो अब कृष्ण के पास गए, वो कृष्ण को अटैक करने गए, ये देखते हुए कि ये तो ग्वाला ही दिखता है. ये नहीं जानते कि वो बलराम जी के बाप ये हैं. बलराम जी इन्हीं कृष्ण के शेष अंश हैं. तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बलराम जी ने ये जो असुरों का वध किया, जैसे धेनु का असुर लोभ का प्रतीक, प्रलंभासुर एक और असुर, ये प्रलंभासुर ये ग्वाल बाल के रूप में घुस गया. जैसे घुसपेटी होते हैं वैसे ग्वाल बाल बनकर घुस गया. तो बलराम जी ने प्रलंभासुर का भी वध कर उद्धार किया. तो प्रलंभासुर वो काम वासना का प्रतीक, कि जब काम वासना किसी के हृदय में होती है तो फिर वो ड्यूप्लिसिटी, उसके अंदर ये ड्यूप्लिसिटी आ जाती है, भेष बदल कर ये सब कुछ करना. तो बलराम जी बहुत ही विशेष चुनिंदा इन राक्षसों का उन्होंने वध किया. क्योंकि हमारी साधना भक्ति में हमें जब तक गुरु बलराम जी की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक ये जो काम वासना या लोभ, इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता. इसलिए बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण ने कुछ एक ये सिलेक्ट असुरों का वध करने के लिए नियुक्त किया था. तो असुरवध लीला में और अन्य भी लीलाओं में बलराम जी केवल भगवान श्री कृष्ण के ही आदेशों का पालन कर रहे थे. तो एक तरफ बलराम जी असुरवध लीला में या वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ शक्ति का प्रदर्शन करते, जब भी जरूरत पड़ती तो बलराम जी शक्ति का प्रदर्शन करते, जैसे कि धेनुकासुर, प्रलंबासुर इन सब का जब वध किया, दृढ़ गोरिल्ला वो एक और था. इसके साथ साथ बलराम जी ने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और अन्य सखाओं के प्रसन्नता के लिए प्रेम का आदान प्रदान भी किया. जैसे हमने चर्चा की कि पांचों रसों में बलराम जी मौजूद रहते थे. तो ये घटना है. यहां तक तो शक्ति, अब बलराम जी का प्रेम कि ये घटना. जब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से असुरों का वध कर दिया और अब कंस केशी को भेज रहा था, तो कंस ने केशी इस राक्षस को नियुक्त किया. और कौन से रूप में भेजा, कौन जानता है? केशी कौन से रूप में आया? भैंस, सांड, बकरी? केशी सुना केशी का नाम कभी? कौन से रूप में आए केशी? घोड़े के रूप में। हरी बोल, बलराम जयंती चल रही है। तो घोड़े के रूप में केशी आया और उसके आने के पहले बलराम जी सबको जानते थे। तो बलराम जी वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये जो आप का मोर मुकुट है और आपकी बंसी, मुझे थोड़ा दो भाड़े पे। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों भाई? नहीं, ऐसे में भी थोड़ा पहन के देखना चाहता हूं कैसा दिखता हूं मैं। और बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण की बंसी और मोर पीस इसलिए मांगा क्योंकि केशी ने कंस से पूछा था कि किसे मारना है, तो कंस ने कहा कृष्ण को। दिखता कैसा, फोटो वगैरह है कोई? तो कंस केशी को कहता है कि एक ही व्यक्ति है जो मोर पीस लगाता है और बांसुरी अपने अटकाए रखता है यहां कमर में, वो एक ही है, उसको ढूंढ लेना, पीट देना। तो बलराम जी जानते थे कि केशी बस यही सब कुछ ध्यान में रखते हुए आ रहा है। तो बलराम जी ने मांग लिया भगवान श्री कृष्ण, लाओ। तो भगवान दे दिए बलराम जी को, अपनी बंसी दे दी और मोर पीस दे दी। और केसी आया और उसने देखा, अच्छा ये है, बलराम जी को देखते तो उसने जोर से अपने आगे वाले दो पैर मारे। बलराम जी पूरा लड़खड़ा कर गिरे नीचे। और यही बलराम जी जिन्होंने धेनुकासुर को घुमा घुमा कर खत्म कर दिया, केवल घुमाने से वो खत्म हो गया था वो धेनुकासुर। तो बलराम जी क्या इस केशी को नहीं मार सकते थे? तो बलराम जी यहां पर थोड़े प्रेम की लीला कर रहे थे कृष्ण के साथ। तो जब इस प्रकार से वो उस घोड़े की लात खाई, तो बलराम जी गए भागते और निकाला ये मोर पीस और ये बंसी, ये लो भैया, ये तो मरवाएगा मुझे। ये तुम ही संभाल सकते हो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने केशी का वध किया क्योंकि उनका सब डिसाइड हुआ था कि कौन से राक्षस किसके लिस्ट में है, किसके अंडर मारे जाएंगे। तो बलराम जी सब पूर्व निर्धारित था कि बलराम जी ने अपने लिए केशी नहीं है इसके अंदर। तो उसे भगवान श्री कृष्ण के अंडर डाल रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर केशी का उद्धार किया। और दामोदर लीला में हम देखते हैं जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया था, तो वहां पर बांधते ही माता यशोदा गई रसोई घर में, यहां पर बलराम जी आए, भगवान श्री कृष्ण को बंधा देख वो चिल्लाने लगे, किसकी हिम्मत इस प्रकार से बांध रखा है मेरे भाई को। तो माता यशोदा छड़ी लेके आती है, हाँ क्यों आवाज कर रहे हो, क्या तकलीफ है? तो बलराम जी अब भी उसी जोश में वॉल्यूम बढ़ाए हुए माता यशोदा कहते हैं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारी सृष्टि के रचयिता, इनको इस प्रकार से एक कैदी के समान बांध रखा है, जानवर के समान। तो माता यशोदा देखती है कृष्ण की तरफ, ये पूर्ण पुरुषोत्तम, ये सृष्टि के रचयिता, ये और तुम कौन हो फिर? मैं सबसे सर्वप्रथम इनका अंश, मैं अनंत शेष। माता यशोदा फिर वो चढ़ी छड़ी लेकर बलराम जी के पीछे भागती है, ये साले सब अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था। तो बलराम जी वो इस प्रकार से ये प्रेम का आदान प्रदान वहां पर उस रस में भी भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने आप को हर समय ढालते रहते। इसलिए हालांकि भगवान बलराम जी की जो इतनी सारी अनगिनत लीलाएं हैं, शक्ति का प्रदर्शन, उनके प्रेम का प्रदर्शन, लेकिन उसके साथ हमें यह समझना है कि उनका तत्व क्या है, बलराम तत्व। जैसे देवकी, देवकी के कितने गर्भों की हत्या कंस ने की थी? षडगर्भ। और बलराम जी वो कौन से पैदा हुए? सातवें। तो सातवें गर्भ बलराम जी थे। तो बलराम जी वो जब पैदा हुए या पैदा होने से पहले ही जब वो देवकी के गर्भ में थे, जो सातवां गर्भ देवकी का, तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण तो आठवें हुए ना, भगवान श्री कृष्ण तो आए नहीं। आने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई, सोचिए छोटा भाई अब तक पैदा नहीं हुआ है, बड़े भाई का अरेंजमेंट कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण योग माया को बुलाकर बोलते हैं कि जाओ और वो संकर्षण, उनको गर्भ स्थानांतरित करना है, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। तो यहां पर यह सिद्ध हो रहा है कि हालांकि भगवान श्री कृष्ण वो छोटे भाई के रूप में आए, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम होने की जो पदवी है वो नहीं त्याग सके। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार जब मायापुर चंद्रोदय मंदिर से वृंदावन की ओर निकले, तो अब कृष्ण बलराम का दर्शन करने वाले हैं, तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से पूछा, तो बताओ कृष्ण और बलराम में शक्तिशाली कौन है? तो सभी बोले बलराम जी, और क्या, नाम ही है बलराम। प्रभुपाद ने कहा नहीं, कृष्ण। और फिर प्रभुपाद ने ये चित्र दिखाए कि कृष्ण बलराम की ये जो मुद्रा है इसमें कौन किसका सहारा ले रहा है? बलराम जी कृष्ण का सहारा ले रहे हैं, अर्थात कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली है। तो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने योग माया को बुलाकर बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के लिए कहा, या गर्भांतरित करने के लिए कहा। लेकिन जो सिद्धांत बताया गया है वो ये कि देवकी की तुलना एक साधक से की गई है, और देवकी के षडगर्भ उनकी तुलना छह अनर्थों से की गई है। तो बलराम जी जो कि गुरु, आदि गुरु हैं, वो भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आने से पहले उन्होंने अनर्थों की निवृत्ति करवाई, या छह गर्भों को वहां से साफ करवाया और स्वयं अनुकूल परिस्थिति स्थापित करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बुलाया। तो आज की जो बलराम जयंती है, ये बलराम जी की योजना या बलराम जी की सेवा भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी महोत्सव का, वो बोलते हैं ना एडवांस पार्टी, हमारे यात्राओं में एडवांस पार्टी होता ना। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन से नीचे आ रहे हैं, तो बलराम जी एडवांस पार्टी के रूप में आए थे। इसका सैद्धांतिक अर्थ क्या है कि हम जो देवकी के समान हैं, कंस के कारागृह में बंद, हमारे जो छह अनर्थों के साथ हम कंस के कारागृह में बंद हैं, तो जब तक बलराम जी की कृपा नहीं होगी वो छह अनर्थों से निवृत्ति नहीं हो पाएगी। और जब तक बलराम जी की कृपा नहीं होगी तब तक अनुकूल हमारे हृदय की परिस्थिति नहीं होगी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए, या भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में जन्मे वो परिस्थिति नहीं आएगी। तो ये उनका तत्व है, गुरु तत्व। इसलिए ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। एक बहुत ही सुंदर घटना इसके संदर्भ में हमारे इस्कॉन संस्था में हुई। बहुत वर्ष पहले अमेरिका में एक विद्यार्थी पोर्टलैंड में वो मास्टर्स कर रहा था, वहाँ की यूनिवर्सिटी में वो मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए वो वहाँ का विद्यार्थी था। तो वो एक दिन वो पढ़ाई लिखाई में कुछ इतना ज़्यादा निपुण नहीं था, तो वो एक दिन अमेरिका में एक म्यूज़ियम में गया और म्यूज़ियम में उसने जो हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो अर्च विग्रह हैं उसमें से केवल बलदेव वो वहां पर उसने देखे, इतना आकर्षण हो गया। वो तो केवल व्हाइट डॉल बुला रहा था, सफेद कलर की डॉल, उसे क्या पता है कौन है। तो उसने वो म्यूजियम से बलराम जी को उठा कर ले आया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के केवल बलराम जी को लेकर आ गया और बलराम जी को लाकर उसने उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत रोमांचक लगा वो कि ये व्हाइट डॉल बहुत अच्छा दिखता है। और वो अपनी स्टडी टेबल पर हर समय उनको रखता, कोई उसने ऑल्टर ऑल्टर या वेलकमिंग वगैरह नहीं किया, उसको क्या पता। तो अपने स्टडी टेबल पर वो बलराम जी के उस छोटे से विग्रह को पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल करता था, होता ना जैसे हम ये क्लिप लगाए वो पेपर वेट के रूप में यहां वहां रखता रहता। तो उसने देखा, आगे चलकर उसने ये साक्षात्कार अपना बताया कि वो पढ़ाई लिखाई में इतना ठीक नहीं था, लेकिन जिस पुस्तक के ऊपर वो बलराम जी को पेपर वेट के रूप में रखता वो सब्जेक्ट और उसमें वो पास होता अव्वल दर्जे से, यू वुड पास इन फ्लाइंग कलर्स इन दैट सब्जेक्ट जिस पे पेपर वेट के रूप में बलदेव जी को रखा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे ये विद्यार्थी अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्च विग्रह को अपने स्टडी टेबल पे रखने लग जाएं। हम रखेंगे तो फिर बलराम जी हमारे ऊपर जो वेट डालेंगे। तो बहुत ये मास्टर्स डिग्री इसने ले ली, पास हो गया और बहुत वर्षों पश्चात फिर इसने अमेरिका में रथ यात्रा देखी, रास्ते पर रथ यात्रा जा रही, इसने देखा ये क्या हो रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये क्या बजा रहे हैं और ये इतने बड़े बड़े ये रथ क्या है, रथ में कौन है। तो उसे कुछ पता नहीं, ऐसे ही खड़ा आश्चर्यचकित। तो सोचिए उसके चेहरे पर एक माला किसी ने फेंकी, तो जैसे उसे लगा कि ये क्या है, कौन फेंक रहा है ऐसी, तो उसके चेहरे पर वो माला फेंकी और वो माला वो कहां से सकती है, बलदेव जी के रथ से पुजारी ने बलदेव जी की माला फेंकी और इसी के चेहरे पे जाके लगी। और इसने जब देखा कहां से वो माला आई तो देखा वही जो छोटे रूप में उसने पेपर वेट के रूप में रखता था वो अपने स्टडी टेबल पर, वो इतने बड़े। तो ध्यान से देखने लगा कि अरे ये तो वही है, उनका स्मॉल साइज था मेरे पास। तो वो भक्तों को पूछा, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या क्या चल क्या रहा है। फिर जब कुछ पता लगा उनको, जब बताया गया कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री बलराम जी, तो वो भागे अपने कमरे में। फिर वो जो भी वो पेपर वेट समझ रहे थे उनको फिर साफ किया और फिर उनको एक फूल अर्पित किया उन्होंने पहली दफा, और आज वो इस्कॉन के दीक्षित भक्त हैं। तो किसी ने ये न कहने प्रकार बलराम जी से कोई आकर्षण उनका हुआ, अज्ञात सुकृति और बलराम जी की कृपा से फिर रथ यात्रा में और भगवान श्री कृष्ण मिले। और रामायण में उदाहरण है मारीच का। मारीच जो कि स्वर्ण मृग मृग बनकर जो आया, सोने का हिरण बनकर जो आया, ये मारीच, इसके जीवन में कोई गुरु नहीं था, इसने कभी गुरु नहीं लिया अपने जीवन में। इसलिए वो जो भी फिलॉसफी झाड़ रहा था रावण को, वो बस उसकी मन घड़न थी। वो ये बोला कि भाई तुम्हारे हाथों से मरना तो मैं राम के हाथों मरो। अभी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, अरे तो भक्तों की वाणी है, तो नहीं, वो मारीच के जीवन में गुरु नहीं था, इसलिए वो मरते समय भी रावण की सेवा करते करते मरा। सेवा किसी कर रहा था, रावण की। तो उसका उद्धार, हालांकि प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से मारीच को मारा, लेकिन फिर भी उसका उद्धार निश्चित नहीं था, क्योंकि वो रावण की सेवा करते करते मरा था। लेकिन उसका उद्धार इसलिए हुआ क्योंकि मरने से पहले मारीच ने हे लक्ष्मण, हे सीते, ये पुकारा था उसने राम की आवाज में। तो क्योंकि आदि गुरु का नाम उच्चारण किया उसने, लक्ष्मण जी का नाम लिया, बस प्रभु श्री राम ने अपनी कृपा दे दी। हालांकि भावना उसकी गलत थी पूरी, कपट था उसके अंदर, लेकिन बलराम जी का, लक्ष्मण जी का, शेष का नाम आ गया मुख पर उसके, उसकी जिह्वा पर, उसका उद्धार होगा। बोलो श्री कृष्ण बलराम की जय। इसलिए नित्यानंद प्रभु, अब नित्यानंद प्रभु कौन है, वो भी साक्षात बलराम जी, साक्षात लक्ष्मण जी। तो नित्यानंद प्रभु, उनकी अडेप्टेबिलिटी देखिए, उन्होंने लक्ष्मण जी का भी रूप लिया और बलराम जी का भी रूप, दोनों का कंबाइंड अवतार नित्यानंद प्रभु। कि जब चैतन्य महाप्रभु को लक्ष्मण की तरह सेवा की आवश्यकता होती तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का रूप ले लेते। जैसे लक्ष्मण जी का रूप क्या था, इंटेंस सबमिसिवनेस, और बलराम जी चाहे जो भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता दे, मैं डांटूं, वो यदि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देती है तो मैं वो बनता हूं। तो नित्यानंद प्रभु वो रूप में भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। तो इसलिए हमें, हम जो कलयुग में निवास कर रहे हैं, हमारे लिए इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे गौर निताय ये मंदिरों की प्रस्थापना की। कृष्ण बलराम, प्रभुपाद कहा करते थे वृंदावन के ओरिजिनल काउंसलर हैं कृष्ण बलराम। जब भी कोई समस्या वृंदावन में होती किसी की भी, तो कौन से काउंसलर के पास जाते, कृष्ण और बलराम के पास। अब एक अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बलराम जी इनके संदर्भ में ये कहना चाहेंगे कि बलराम जी वो दुर्योधन के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाए हर समय। ये बात बहुत हमें असमंजस में डाल देती है कि दुर्योधन के प्रति बलराम जी ने इतनी सहानुभूति क्यों दिखाई। वो इसलिए क्योंकि दुर्योधन मूर्तिमान कली था और हम इस कलयुग में हम सब छोटे मोटे सब दुर्योधन घूम रहे हैं इस कलयुग। वो दुर्योधन का अंश अवतार हम सब में है। तो बलराम जी ने देखा कि यदि मैं अपनी कृपा इस दुर्योधन को नहीं दूंगा तो आगे चलकर जो मेरा विस्तारित स्वरूप गुरु कलयुग में, वो इन दुर्योधनों का उद्धार कैसे करेंगे? कौन से दुर्योधन? ये जितने हम लोग सब कलयुग में घूम रहे हैं, कली का अंश जो हमारे अंदर है। इसलिए नित्यानंद प्रभु जैसे उन्होंने जगाई मदाई का उद्धार किया, वो मदिरालय में जाकर ऐसे शराबी कबाबी जुआरी नशेड़ी इन सब का उद्धार करते थे, वैसे ही बलराम जी ऐसे लोगों को चुन चुन के कि जिसमें जिनको चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण अपनी लिस्ट में नहीं लेते थे, तो किसी को तो उनका उद्धार करना था, तो बलराम जी वो अपनी लिस्ट में उनका एंट्री करते हैं। तो हम यदि अपने आंतरिक मन को देखें तो हमारे लिए उद्धार के लिए आसार बलराम जी हैं, हमारी कैटेगरी उसी लिस्ट में जाने के लायक है। तो यही हम बलराम जी से प्रार्थना करना चाहेंगे आज के विशेष इस दिन पर, कि जैसे बलराम जी ने कोई भेदभाव नहीं रखा, अपनी कृपा, जैसे ये बताया जाता है जब कोई नशे में होता है तो वो कोई भेदभाव नहीं करता, वो कोई भेदभाव नहीं करता कि वो किसके गले मिल रहा है, वो किसे क्या दान दे रहा है, क्या निकाल के क्या। उस प्रकार से बलराम जी नित्यानंद प्रभु हैं, वो इस प्रकार से मदोन्मत रहते हैं कृष्ण प्रेम में, और वो देखते नहीं पात्र अपात्र न देखी, ये नहीं देखते कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, वो अपनी कृपा सबको देते हैं। तो वही एकमात्र आशा है हमारी। तो इसलिए आज के दिन जैसे रूप गोस्वामी पाद इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में हमने जो शुरुआत की कि बलराम जी की उस मदोन्मत अवस्था और उनके उस मदोन्मत वाक्यों की कृपा आज हमारे ऊपर हो और हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम को और हाँ बलराम जी की कृपा से उनको प्राप्त करें, यही आज हमारी प्रार्थना श्री श्री कृष्ण बलराम जी से होनी चाहिए। बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी।
इस ग्रह शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।